भगवान का एक नाम पक्षी रखा गया है। भगवान भक्तों के पक्ष में अवतार लेते, जैसे मृख ने जुल्म किया तो उनके जुल्म से सताए गए, अत्याचार के निशाने बने लोग, सिंधु नदी के किनारे गए और अर्चना प्रार्थना की, भगवान अवतरित हुए और उन्हीं के पक्ष में भगवान ने मृख को जरा ताड़ना की और समझाया। जैसे माँ के चार बच्चे हैं तो दो बच्चे कोई हराम जादे और दो सीधे साधे और माँ को पुकारती तो माँ जानती है कि सही कौन है गलत कौन है, तो गलत को जरा ताड़ना देगी और सही का पक्ष लेगी। ये माँ का पक्ष होते हुए भी माँ के चित्त में अपने सभी अपने बेटे हैं, ऐसी समझ बनी रहती है। जो बाहर से स्नान तप और नमाज करते हैं और भीतर से ईर्ष्या से भरे रहते हैं, द्वेष से भरे रहते हैं, उनके चित्त में वो शांति आनंद नहीं आता। जो सच्चाई से भगवान के नाम के साथ ही भगवत भाव को अपने चित्त में लाते हैं, उन्हें शांति और आनंद का एहसास होता है। भगवान आठवें अध्याय के आठवें श्लोक में ऐसी ऊंची बात कह रहे हैं सभी के हित की कि ये तो सुवर्ण अक्षरों से अपने दिल पर लिख देना चाहिए। अपना मंगल किस में है और अपन कैसे उन्नत हो सकते हैं भगवान बताते हैं। भगवान के श्री मुख से निकले हुए वचन आपके मुख से भी उच्चारित हो जाए, उच्चारण करना। अभ्यास योग युक्ते न, अभ्यास योग युक्ते न, चेतसा नान्यगामिना,
चेतसा नान्यगामिना,
परम पुरुषम दिव्यम,
परम पुरुषम दिव्यम,
याति पार्थनु चिंतयन,
याति पार्थनु चिंतयन।
भगवान कहते हैं प्रथानंदन अर्जुन, अभ्यास योग से युक्त होकर और अन्य का चिंतन न करने वाली चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ तो उसी को प्राप्त होगा। अपने स्वभाव को तुम बदल सकते हो। फ्रिज अथवा गीजर तो जड़ है किन मनुष्य चेतन है, अपने स्वभाव पर विजय पा सकते हो। हीन स्वभाव पर, अज्ञान संयुक्त स्वभाव पर, अहंकार संयुक्त स्वभाव पर, वासना से भरे हुए स्वभाव पर, चिंता से भरे हुए स्वभाव पर आप विजय पा सकते हैं। क्या करें, हमारा स्वभाव है यार, हम क्या करें, छूटता नहीं। जो छूटता नहीं कहते ऐसे लोग भी हिम्मत करते तो दारू छूट जाता। जो ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बोलने की आदत है, फिर छूटती नहीं। उनको अगर समझाया जाए कि भाई तुम्हारी वाणी जब तुम बोलते हो तो खूब खर्च होता है। भगवान वेदव्यास जी ने नारद जी की सलाह से समाधि की, युग युग कल्प कल्प में भगवान ने अवतार लिए और अवतारों का लीला स्मरण करके व्यास जी श्लोक बद्ध करते और गणपति जी लिखते जाते थे। 18,000 श्लोक लिखे गए, 12 स्कंद बन गए, 335 अध्याय बन गए, श्रीमद् भागवत जैसा सदग्रंथ तैयार हो गया। व्यास जी प्रसन्न हुए और गणपति जी से एक प्रश्न किया कि प्रभु 18,000 श्लोक में बोलता गया, आप लिखते गए, मेरा आवाज तो आपने सुना लेकिन आपका एक भी शब्द मेरे कान तक नहीं पहुंचा। अगर मैं सुनने के योग्य हूं तो उसका कारण बताने की कृपा करें। तब गणपति जी ने कहा, और गणपति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इंद्रिय संयम में गणपति जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, पार्वती के समान कोई साध्वी नहीं और इंद्रियों को वश करने वालों में गणपति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो गणपति जी ने कहा कि दीपक में घी या तेल डालो, कम डालो या ज्यादा डालो, लेकिन ज्योत जलेगी तो तेल खपेगा। ऐसे ही व्यक्ति वाणी बोलता है तो जीवनी शक्ति खर्च होती है। वाणी बोलने में तीन शक्तियों का खर्च होता है, एक तो सारे शरीर का जो ओज है उसका सात्विक हिस्सा खर्च होता है, दूसरा मांसपेशियों में का राजसी हिस्सा खर्च होता है, और तीसरा जीवनी शक्ति अर्थात काम करने की जो शक्ति है, जीवा बोलती है, हाथ हिलते हैं, वो खर्च होती है। अर्थात ओज ओज जीवनी शक्ति और मांसपेशियों की ऊर्जा, ये तीनों वाणी बोलने से खर्च होती है। तो मैं वाणी क्यों बोलूंगा व्यर्थ की? और जो व्यर्थ का नहीं बोलता, कम बोलता है, सारगर्भित बोलता है, उसकी वाणी का प्रभाव होता है। तो ये गणपति और व्यास जी के संवाद से आपको ये भी सीखना है कि आप वाणी का कभी दुरुपयोग ना हो, सावधान रहे, वाणी व्यर्थ खर्च ना हो। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। मन में अकारण एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे विचार से तीसरा विचार, ये करने की आदत, चिंतन करने की आदत है। कुछ नहीं तभी भी उधेड़ भून करता रहता, और सावधान रह के देखे तो ये व्यर्थ की कल्पना है, फिर भी मन की आदत है। इसलिए बार बार ऊंचे स्वर से भगवान का नाम उच्चारण करें, उसके बीच कभी कभार मन तो क्या सोच रहा है ऐसा करके मन से पृथक होकर मन पर निगरानी रखने की आदत डाल दें, तो व्यर्थ का चिंतन अथवा व्यर्थ का विलाप में जो शक्ति ऊर्जा क्षीण होती है वो बच जाएगी। चेतसा नान्य गामी नहीं, परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंते। उस परम पुरुष दिव्य का तुम चिंतन करो तो उसी को प्राप्त हो जाओगे। ये ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब छोटी छोटी बातें, लेकिन ये सब जिसे देखा जाता है वो सबका आधार, सबका सार, सबको सुख स्वरूप का अनुभव कराने वाला, रात्रि को सब जिसी में थकान मिटाने को विश्रांति पाते हैं, उस परमात्मा का चिंतन कर अपने आत्मा के रूप में, तो तू दिव्य गति को और दिव्य शांति को, दिव्य सुख को प्राप्त करेगा। व्यक्ति के निर्माण में भगवत प्रेम बहुत बहुत महत्व का है, और वो भगवत प्रेम सत्संग से प्राप्त होता है। अंतःकरण में अनंत रिपु हैं, काम शत्रु है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, जातिवाद है, फलाना है, ढींगणा है, लेकिन सभी शत्रुओं को भगाने के लिए परम मित्र दिव्य पुरुष परमेश्वर की भक्ति। रज्जब छूटे कौन विधि बिन साहे भगवंत। रज्जब कवि हो गए, संकीर्णता से बाहर निकले हुए कवि कहते हैं रज्जब, कि रज्जब छूटे कौन विध बिन साहे भगवंत। 1940 में मूर्धन्य पत्रकार ने गामा पहलवान से पूछा, गुलाम हुसैन में से बने गामा पहलवान, तुमने हजार हजार कुश्तियां जीती और एक कुश्ती में भी तुम परास्त नहीं हुए, उसका कोई रहस्य के आप बताओगे? तो गुलाम हुसैन गामा पहलवान ने कहा कि मेरी कहीं किसी नारी पर निगाह जाती तो मैं तुरंत अपनी निगाह को रोक लेता हूं और बुरी निगाह से देखता नहीं। एक तो ये बात कि मैंने संयम का आश्रय लिया, ब्रह्मचर्य का थोड़ा आश्रय लिया। दूसरी बात, कुश्ती में जब मैं उतरता हूं तो सामने वाले पहलवान से हाथ मिलाने के पहले मैं अपना दिल दिल भर दाता श्री कृष्ण से मिलाकर फिर कुश्ती करता हूं। मुसलमान गुलाम हुसैन भी कृष्ण की मधुर स्मृति में इतना सफल हुआ कि सनातन धर्म की व्यासपीठ पर गुलाम हुसैन की सराहना करने में हमें संकोच नहीं होता, क्योंकि सनातन संस्कृति ने संकीर्णता की दीवारें ही नहीं रखी है। अपना और ये पराया सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा दो। फिर भी जो फासले रखते और तुम्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र करते हैं, तो श्री कृष्ण की नाई सतर्क रहना भी तुम्हारा कर्तव्य है। आओ भीम, बेटा भीम, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं, धृतराष्ट्र ने कहा। कृष्ण समझ गए कि हरामी गले लगाने के बहाने भीम को अपनी भुजाओं में पिस डालेगा। श्री कृष्ण ने क्या युक्ति की कि भीम को इशारा करके दूर कर दिया, और लोहे की मूर्ति जो दुर्योधन ने बनाई थी भीम की, वो लोहे की मूर्ति धृतराष्ट्र के आगे धर दी, और धृतराष्ट्र ने आलिंगन करके इतना जोरों से दबाया, कई हाथियों का बल था धृतराष्ट्र की भुजाओं में, इतना जोरों से लोहे की मूर्ति को दबाया, दबाया 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 लोहे की मूर्ति तोड़ डाली। तो बेचारे भीम का क्या हाल होता। कृष्ण व्यवहार सिखाते हैं कि आप सब में ईश्वर को तो देखो, लेकिन दूसरा आपके साथ कुछ कूटनीति करता है या छल कपट करता है, आप सब में भगवान भगवान करके उसकी कूटनीतियां छल कपट का शिकार मत बन जाओ। आप अपनी सुरक्षा करने के लिए युक्ति का आइडिया करो, ताकि वो भीम को कुचले उसके पहले लोहे का पुतला उसकी छाती पर ऐसा तो भिड़ा कि रक्त की उल्टी हो गई, वो भी याद करे बुढ़ा कि कैसा कपट किया जाता है। तो संसार व्यवहार में ज्ञान भीतर की अनुभूति है, भीतर की समझ और व्यवहार बाहर सामने वाली व्यक्ति को देखकर, उनके छल कपट या सच्चाई और उदारता को देखकर किया जाता है। योग कर्मसु कौशलम, योगी कर्म करने में कुशल है। माछा करें साई हाँ जी, भगवान जी मर्जी, अरे भगवान की मर्जी क्या, भगवान भी खुद भगवान। शाकुनी के कंधे पे हाथ रखते लेकिन सावधान रहते, धृतराष्ट्र से मिलते लेकिन सावधान रहते। जयराम जी, भगवान की मर्जी करके आपकी कोई गाड़ी उठा के ले जाए, जो भगवान की मर्जी। छा करें साई भगवान जी मर्जी, गंगे हर गंगा माई जी मर्जी हूँ तो माँ स्नान करे बाहर निकर नसनत, बोड़न जी मर्जी हूँ नस्ता हली भी नई मुई चरी चक। गंगा माई की मर्जी होगी तो मैं नहा लूंगी और बाहर आ जाऊंगी, गंगा माई की मर्जी होगी तो मैं बह जाऊंगी, क्या करें, सब में भगवान है। ऐसा ज्ञान भगवान नहीं देते हैं, भगवान समता की समझ के साथ आपको व्यवहार की कुशलता का भी आदेश देते हैं। योग कर्म सुख कौशलम। ऋतु बदलता है तो खान पान और पहरवेश बदलना पड़ता है। भगवान की मर्जी करके जो जाड़ों में तुम खाते थे मोनथाल और खोराक और मेथी पाक, वो अभी खाओगे तो फिर हो जाएगा खाना पचा नहीं, एसिडिटी हो गई, अजीर्ण हो गया। अजीर्ण में पानी औषध का काम करता है। अजीर्ण है तो बार बार पानी पिए, खूब पानी पिए, अजीर्ण दूर हो जाएगा। लेकिन भूख लगी और पानी पिया, ठंडा पानी पिया तो भूख मार देगा। सही शरबत मिल रहा है, शरबत, लेकिन भोजन के समय शरबत पियोगे तो फिर भोजन कैसे पचेगा। और शरबत भी दूध डाला हुआ शरबत पीते हैं तो नमक वाली सब्जी कैसे खाओगे। तो आयोलाल झूलेलाल तो करो, लेकिन आयोलाल झूलेलाल के साथ साथ स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए शरबत बनाओ, शरबत पियो या पिलाओ, बांटो या बटाओ। क्या करें, बांट रहे, दे रहे हैं, दे तो रहे हैं, लेकिन उनका तो शरबत मिला, शरबत तो हमको मुफ्त में मिला, लेकिन पेट अपना मुफ्त का नहीं है, पेट तो बड़ा कीमती है। अगर पेट को खराब कर दिया, भोजन और शरबत साथ में लेने लग गए, नहीं, दूध का शरबत पिया और फिर भोजन किया, अथवा भोजन किया और ऊपर से दूध का शरबत पिया, स्वास्थ्य की हानि होती। तो व्यवहार में कुशल रहें, शरीर तंदुरुस्त रहे, इस प्रकार के भोजन के करने के नियम है, मन प्रसन्न रहे, ऐसे सुबह ऊंचा चिंतन करके बिस्तर का त्याग करें और रात्रि को सोएं तो ऊंचा चिंतन करते करते सोएं, चिंता लेकर न सोएं, थकान लेकर न सोएं, वैर लेकर न सोएं, द्वेष लेकर न सोएं, भय लेकर न सोएं, ऊंचा चिंतन लेते करते करते फिर थोड़ी देर निश्चिंत, मैं निश्चिंत हूँ, अब प्रभु जाने। तुलसीदास ने कहा, तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होके सोए, होनी है सो होएगी, अनहोनी ना होए। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। हनुमा छा करया छा करया छा करया, चिंता करे करे खोपड़ी खाली थी वही, हथ प्या डकन छा करया छा करया, करण करावन हार स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी। रात को सोते समय मैं क्या करूं, कैसे करूं, कल उसको क्या जवाब दूंगा, चिंता छोड़, फिकर फेंक कुएं में। जन्म लेना आपके हाथ की बात नहीं है, मृत्यु आपके हाथ की बात नहीं है, बुढ़ापा को थामना, सफ़ेद बालों को थामना तुम्हारे हाथ की बात नहीं, जो मुख्य काम हो रहे हैं भोजन पचाना तुम्हारे हाथ की बात नहीं, ये तो चल रहा है। जब सारे मुख्य काम ईश्वर की नियति के अनुसार चल रहे हैं तो बाकी का भी ईश्वर के चरणों में डाल दे, चिंता आप निश्चिंत रहो। राम तीर्थ दृष्टांत देते थे, एक दुल्हा की शादी हो गई, कुछ दिनों के बाद वो ससुराल जा रहा था, सर्दियों के दिन थे, पत्नी गई मायके, अब सर्दियां पूरी हो गई, गर्मी शुरू हो रही, घोड़े पर सवार होकर कुछ सामान माँ ने दिया अपनी बहू के लिए, अपनी संबंधी के लिए, तो डब्बे वब्बे दिए कुछ जो सामान, वो घोड़े पे बैठा, थोड़ा सा आगे गया, दोपहरी के पसीने ने खबर ली, सोचता क्या रहा, इतनी गर्मी, एक तो मैं बैठा हूँ घोड़े पे और दूसरा इतना सारा सामान लादा है। उस युवक ने क्या करा, घोड़े से उतरा और पूरा सामान अपने शरीर पर लाद दिया, कुछ सामान पीठ पे बांधा, कुछ कंधों में लटकाया और बाकी का थोड़ा सा सामान अपने सिर पे रखा और फिर घोड़े पे बैठ गया कि आश घोड़े को तो आराम मिलेगा। अब चलते चलते ससुराल का गांव आया, ससुराल ने देखा कि ये कौन सा प्राणी आ रहा है घोड़े पर। ससुरा जी खटिया लाओ खटिया, ससुरा ने कहा खटिया अस्पताल ले जाने वाले के घर में, ये तुमने क्या कर रखा। बोले क्या करें, घोड़े पर इतना बोझा तो ठीक नहीं था, इसलिए मैंने अपने सिर पर और अपने कंधों पर अपनी भुजाओं पर लाद दिया है। फिर भी बोझा तो घोड़े पर ही था। ऐसे ही तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हारे खान पान रहन सहन मिलन बिछड़न का सारी व्यवस्था सृष्टि नियता की सृष्टि में है, फिर भी जीव अपने सिर पर लाद देता है, अपने कंधों पे लाद देता है और फिर प्रारब्ध रूपी घोड़े पे बैठता है और परेशान हो जाता है। वो जमाई राज तो एक दिन के लिए परेशान हुए, बाद में दोबारा गए होंगे तो घोड़े पर सामान घोड़े पर ही रखा होगा, अपने पर नहीं लादा होगा। लेकिन ऐसे कई घोड़े सवारों को मैं जानता हूँ जो अपने पर लाद कर ही जीवन बोझिला जीते, जयराम जी की, ऐसे कईयों को मैं देखता हूँ। और जब कथा में आते तो थोड़ी देर के लिए उनका सामान उतर जाता है तो उनको लगता है कि बड़ा अच्छा लगा, बड़ी शांति मिली, फिर जितने दिन वो सामान हटा के रहते हैं तो खाली खाली रहते, खुश खुश रहते, फिर सामान लादते जाते बोझिले हो जाते, फिर पूछते रहते कि बापू कहाँ मिलेंगे और बापू का सत्संग कहाँ होगा, क्योंकि सामान उतारने की बात है बापू के पास। नारायण हरि बोलो ना, कंजूसी ना करो, नारायण हरि नारायण हरि। सतु दीर्घ काले नहीं अत दीर्घ काल तक योग दर्शन कहता है कि अपने ईश्वर स्वरूप का चिंतन करें और निर्भार होने का चिंतन करें, क्योंकि दीर्घ काल से भारी होने का चिंतन किया, दीर्घ काल से पिता होने का, पुत्र होने का, पति होने का, फलानी नाती वाला होने का, फलानी जाति वाला होने का तुमने चिंतन किया है। मैं फलानी जाति का हूँ, मैं फलानी नाती का हूँ, मैं माई हूँ, मैं भाई हूँ, मैं फलाना हूँ, ये तुमने दीर्घ काल से चिंतन किया है। इसलिए तुम्हें सच्चा चिंतन भी दीर्घ काल तक करना चाहिए कि मैं माई हूँ। बिल्कुल झूठी बात है, माई का तो शरीर है, ये शरीर पति की पत्नी है, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा की सनातन हूँ। ये पति पत्नी का पति है लेकिन परमात्मा का तो सनातन सपूत हूँ। इस प्रकार दीर्घ काल तक अपना शुद्ध अभ्यास करना चाहिए। अगर शुद्ध अभ्यास नहीं किया ज्ञान का तो आंखें मूंद के बैठे तब भी मन कहीं ना कहीं उधेड़ भूंद करेगा। माला करो तभी भी मन जाएगा। तो माला भी करें, ध्यान भी करें, सत्कर्म भी करें, लेकिन उसमें अभ्यास योग को मिला दे। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्य कामिनी। अभ्यास योग से युक्त होकर अन्य का चिंतन न करो, अन्य अन्य में जो अनन्य बैठा है उस परमेश्वर स्वभाव का चिंतन करो।